الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات پر مشتمل درس ہوتا ہے، اور آج کل حضرت کے دو مکتوبات شریفہ، مکتوب نمبر 209 اور مکتوب نمبر 234 سے مستفاد کتاب حقیقت توحید و رسالت کا درس ہو رہا ہے. اس میں صفحہ نمبر 105 پر یہ بات لکھی گئی ہے، اور یہ پچھلی دفعہ بھی یعنی اس پہ بات ہوئی تھی، لیکن میں نے بعد میں جب ساتھیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ بہت کم لوگوں کو اس کا اندازہ ہوا ہے کہ کیا کہا گیا، تو اس وجہ سے پھر دوبارہ کیا جا رہا ہے. یہ اس میں میرے خیال میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ جب یہ کتاب حقیقت جذب و سلوک لکھا جا رہا تھا، جس میں یہ آج کی جو چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کو چار دفعہ پڑھا گیا تھا، چار دفعہ کور کیا گیا تھا، اور چار دفعہ گروپ ڈسکشنز پھر ہوئے تھے. اس پر اس کے بعد پھر یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہیں، اور اس سے کتاب وجود میں آیا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، چونکہ ساتھی جو پہلے تھے وہ میرے خیال میں آج کل نہیں آ رہے، اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے آج کل مطلب وہ ساتھی تو نہیں ہے، تو نہیں ہے ساتھیوں کے لیے پھر وہی بات ہے، یہ بات نہیں ہے. اس لحاظ سے اگر کوئی کسی کو سمجھ نہ آئے تو میرے خیال میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. حق تعالیٰ سے دو قسم کے فیوز پہنچتے ہیں، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. فعال لما یرید، اس لحاظ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، یعنی اس کے لیے ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اسباب اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں. ارادہ اگر انسان کا ہو ساتھ تو اسی پر فیصلہ ہوتا ہے، یعنی ثواب و عذاب کا، لیکن جو کام ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اسباب تو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اس وجہ سے ہر چیز میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں. جب تک اللہ پاک کو کام نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دینی کام ہو چاہے دنیائی کام ہو. مثلا میں نماز پڑھنا چاہوں، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں، پھر کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہو گیا، جو بھی ہو، اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ثواب ملے گا. تو یہ مطلب بات ہمیں نظر آنی چاہیے، محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے سارے کام کرتے ہیں. تو پھر اللہ جل شانہ سے دو قسم کے فیوز ہر وقت آ رہے ہوتے ہیں. ایک کا تعلق دنیائی امور سے ہے، جن کو تکوینی امور کہتے ہیں، مثلا مختلف تکوینی امور جیسے پیدا کرنا، مارنا، رزق دینا وغیرہ. حی اللہ یموت، خود تو زندہ ہے اور موت بھی، لیکن یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، رزاق بھی ہے. دوسری قسم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، مثلا ایمان، معرفت اور مراتب ولایت میں ترقی عطا کرنا وغیرہ. جب ہم دعا کرتے ہیں تو چونکہ ہم عاجلہ کے مریض ہیں، لہذا زیادہ تر ہم دنیاوی دعاؤں پہ امین بہت زیادہ دل سے کرتے ہیں، اور جو دینی باتیں ہوتی ہیں مثلا کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت فردوس دے دے، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اللہ پاک ایمان نصیب، اس پہ امین عادتاً کہتے ہیں، مطلب یہ والی بات ہے. میں اکثر دعائیں کرتا ہوں نا، تو جب کبھی بیماری وغیرہ عام ہو، جیسے کرونا کا مسئلہ تھا، کہتے ہیں اللہ کرونا کی بیماری کو ختم فرما، سب طرف سے آمین آ جائے بالکل، اور اس سے بڑی دعا میں کرتا تھا کہ اللہ سب کو ہدایت فرما دے، آمین. मतलब ये होता है नहीं होता। तो ये दो किस्म के फ्यूज है, एक तकवीनी है और एक तशरीही है। एक का ताल्लुक दुनिया के साथ है, दूसरे का आखिरत के साथ है। एक का ताल्लुक हमारा गोए के एनवायरनमेंट है और दूसरे का ताल्लुक हमारे मकसद से है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, नहीं पैदा किया मैंने जन्नत और इंसान को मगर अपनी इबादत के लिए। तो उसका ताल्लुक हमारा आखिरत के साथ है और हमारा बुनियादी मकसद है वो। पहली किस्म का फेस सबको सिफात के जरिए से अता होता है, ठीक है, अल्लाह रजा के तो रिज़िक देता है, अल्लाह जो है ना वो मतलब करीम है तो करम फरमाते हैं, अल्लाह रहीम है तो रहम फरमाते हैं, अल्लाह जो है ना छुपा दे तो ज़ाहिर नेमतें देता है। तो ये सिफात के जरिए से, अभी तो कोई बात समझ के बाहर तो नहीं है। चलो ठीक है माशाल्लाह, अब ज़रा मैंने तरीका सीख लिया साथ साथ ही। हाँ जी, इसलिए अल्लाह ताला के नामों के जरिए से उनका हुसूल होता है। जैसे मैं कहता हूँ या अल्लाह या करीम या सुभान। हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो औलिया इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर हैं उनको मुहम्मदी मशरब कहते हैं। इनको ये दूसरी किस्म का फेस यानी आखिरत वाला शुयनात के जरिए से, शुयनात के जरिए से शान, शान कुल्ले उमन वफी शान, शान की जमा शुयनात है। तो शान का ताल्लुक जात के साथ ज्यादा है और सिफात शान से निकलते हैं, अल्लाह की शान। हाँ जी, तो इन हजरात को, इन आप सल्लम को जो मुहम्मदी मशरब हैं उनको ये दूसरी किस्म का फेज, दूसरी किस्म का फेज, दूसरी किस्म का फेज, क्या आखिरत वाला फेज, ये शुनात के जरिए से। और बाकी हजरात को जो बाकी अंबिया कराम के कदमों पर होते हैं उनको वो सिफात के जरिए से आता होते हैं, ठीक है। हाँ जी, जैसे या गफूर है या रहीम है, सिफात के जरिए से अता होते हैं, नुज़ुलम मिन गफूर रहीम। तो सिर्फ दस ये जानना जरूरी है कि सिफात का अपने खारिज में वजूद है, यानी सिफात जो है वो बाकायदा तौर पर मौजूद है। भाई रोशनी मौजूद है नहीं है, तो इस तरह जो सिफात होती है वो मौजूद होती है, बड़ाई मौजूद है, छोटाई मौजूद है। तो ये सिफात अल्लाह जल्ला शानु की ये भी ये मौजूद है, बाकायदा इनका वजूद है, अल्लाह ताला के जो सिफात है इनका खर्ज में वजूद है। और शुयनात का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ होता है, यानी अल्लाह जल्ला शानु के साथ है वो, क्योंकि उसका ताल्लुक ज़ात के साथ है। इसकी ज़्यादा तफसील आकर के इसके मकतूब की तशरीह हकीकत जज्ब सलूक में मुलाहिज़ा की जा सकती है, जिसका मैंने जिक्र किया, चार दफा पढ़ा गया था। सिफात के मुशाहदे में कभी एक सिफत की तजल्ली ज्यादा होती है और कभी दूसरी सिफत की, क्योंकि सिफात कई हैं, जाहिर है अल्लाह ताला की मर्जी किस सिफत से भी किसके साथ पेश आए। अल्लाह कहार और जब्बार भी है, अल्लाह पाक गफूर रहीम भी। हाँ जी, तो इस वजह से हम अल्लाह पाक कि सिर्फ एक सिफत पे नजर मरकूज नहीं कर सकते। ये शायर लोग जो होते हैं ना, मतलब सिफत गफूर रहीम को बहुत ज्यादा बयान करते हैं, अच्छी नीयत से नहीं, अमल न करने की नीयत से, मतलब कि इंसान बस जाहिर बस वैसे मुफ्त में ही। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इतनी वाजिद हदीस शरीफ मौजूद है ना, एक तरफ इंसान का कियास और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो क्या बात हो सकती है इनका आपस में मुकाबला। आप सब फरमाते हैं अकलमंद वो है जिसने अपने नफ्स को काबू किया اور آخرت کے لیے کام کیا، وہ بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا کہ جو کرنا چاہے کرے اور محض تمنائیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ وہ بات ہے. کیوں شاعر لوگ اس طرح کرتے ہی نہیں کرتے؟ بھائی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک اسٹوڈنٹ بالکل کام نہیں کرتا پھر بھی پاس ہونے کا چانس ہے. این ممکن ہے کچھ آلات ایسے بن جائے کہتے ہیں چلیے اس دفعہ سب کو پاس کرو، ہوتے ہیں چانس ہے. لیکن کیا اس بنیاد پر، اس چانس کی بنیاد پر کوئی پڑھنے سے رکتا ہے؟ اور اگر رکتا ہے تو رسک لے رہا ہے، رسک لے رہا ہے مطلب ظاہر ہے، اگر نہ ہوا تو فیل تو ہو ہی جائے. تو دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہیں، دنیا کے معاملے میں ان شاعروں سے اگر کوئی پوچھے تو کوئی چیز مس کرتے ہیں؟ نہیں مس کرتے. لیکن دین کے معاملے بڑے وسیع و ظرف ہو جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف شیطان کی طبقی ہے، شیطان کی طبقی اور کچھ نہیں. جو اللہ والے ہیں نا ان کو ہم نے دیکھا الحمدللہ، بڑی محنت کرتے ہیں، جی لگا کے محنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کی شان کے لائق کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں اللہ پاک نے اپنی شان دکھانے کے لیے کچھ لوگوں بڑے چھوٹے چھوٹے کاموں پر معاف کر دیا، لیکن اکثر لوگ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ مطلب ظاہر چانس والی بات ہے. تو میں اس لیے کرتا ہوں، دنیا میں کوئی چانس کیوں نہیں اویل کرتا اس طرح؟ بھائی میں بالکل پاسبل ہے کہ میں اس راستے پہ جاؤں اور مجھے 5,000 کے کچھ 20-25 نوٹ پڑے ہوئے مل جائیں اور میں اٹھا لوں. ہاں جی، اور میرے ایک سال کا کام ہو جائے، پاسبل ہے، ناممکن نہیں. لیکن کیا کبھی میں نے کام چھوڑا ہے اس وجہ سے کہ میں کام نہ کروں؟ چلو جی ممکن ہے اس طرح مل جائے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ بعض باتیں بڑا ذرا واضح کرتے ہیں، کیونکہ ان کو آج کل کے لوگوں کا پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا مطلب چھوٹی بات کو نہیں سنتے. تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تما لوگ ہوتے ہیں، تما تما کرنے والے، خام خا کے، ان میں بڑے عجیب عجیب لوگ بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ دو آدمی جا رہے تھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، سامنے کتا آیا تو ایک شخص نے کتے کو سلام کیا، السلام علیکم. تو دوسرے کہا کیوں بھائی تجھے کیا ہو گیا، کتے کو کیوں سلام کیا؟ کہتے ہیں ممکن ہے جنوں اور مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے کچھ دے دے. تو حضرت نے فرمایا اس بیوقوف کو پتہ نہیں ہے کہ جنات بھی، شریف جنات جو ہوتے ہیں وہ کتے کے روپ میں نہیں آتے، وہ کوئی اعلیٰ رنگ کے اس میں آتے ہیں. یہ تو جو خصیص قسم کے جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں میں آتے ہیں، کبھی سام کبھی کیا. تو یہ ہے کہ چونکہ تمہ تھا، اب تمہ اتنا دور اسکار، اندھے کو اندھیرے میں بڑی بکی سوجی. تو یہ بات مطلب ظاہر ہے ہمارے لیے ذرا تھوڑے سے قابل فکر ہے. صفات کے مشاہدے میں کبھی ایک صفت کی تجلیات، کبھی دوسری صفت کی، کیونکہ صفات کا ہی ہیں. اور شیون کے مشاہدے میں بس اللہ کی ذات کی طرف ہی توجہ ہوگی، کیونکہ ذات ایک ہی ہے. صفات والے حضرات میں جس پر کسی خاص صفت کا غلبہ ہوتا ہے تو باقی صفات ان کی نظروں سے چھپ جائیں گی، وہ اسی کے اندر فنا ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی بیان کر رہا ہے، اس پر اللہ کے رحیم ہونے کی صفت کھل چکی ہے، دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی کسی اور صفت کی طرف متوجہ ہے، باقی صفات سے اس کا محجوب ہوتا ہے. اگر کوئی خاص صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو چونکہ وہ ذات میں تو فانی نہیں، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ کسی وقت کسی معاملے میں باقی نفس اس کو کھینچ لے اور وہ فنا فی اللہ کے مقام سے محروم ہو جائے. और शून वाला चूंकि जात में फानी है इसलिए इसका पूरा नफ्स फानी होता है, इसलिए उसको ऐसी हालत पेश नहीं आ सकती। वो साहिब शान के रूबरू होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैं किस सिफत की तरफ हूँ, इलम की तरफ हूँ, खल्क की तरफ हूँ, करम की तरफ हूँ, बस वो अल्लाह की ज़ात की तरफ ही मुतवज्जे होता है। और बाकी तमाम की तमाम सिफात उसको उस ज़ात के हवाले से एक खुलासे की तरह नज़र आएंगे। इसकी मिसाल कुछ यूँ दी जा सकती है कि आदमी अगर किसी शख्स से उसकी सखावत की सिफत की वजह से मुतासर हो जाए और उसकी वजह से उस पर आशिक हो जाए, तो आशिक तो हो गए उस पर खास सिफत की वजह से, लेकिन जब आशिक हो ही गए तो फिर उस सिफत को भी भूल गए। हाँ जी, उस सिफत को भी भूल गए, सिर्फ उसकी ज़ात पर आशिक हो रहे। तो अब इसको उस शख्स की और सिफात नज़र तो आएंगी लेकिन एक खुलासे की शक्ल में, असल में उसको उस ज़ात से मोहब्बत होगी। तो जो साहिब शान की रूबरू होता है उसको मजीद चीज़ों का इदराक इस कदर तफसीली नहीं होता, बस खुलासे के दर्जे में होता है। जैसे आपको किसी का पता पता हो, उसकी ऊंची शान, उसकी ऊंचाई, लेकिन तफसीलात का इलम ना हो, ये कैफियत वाली बात है जो इंसान समझा नहीं सकता। वाकई ये हाल इंसान पर तारी होता है, वो जिस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है उस हालत को समझा नहीं सकता, बस वो अल्लाह ताला की तरफ ही मुतवज्जो होता है, उसको हम कोई और रंग नहीं दे सकते। और चूंकि ये कैफियात हैं और कैफियात को बयान नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये बात इसमें हमेशा चलेगी। जैसे कोई किसी चीज़ को महसूस कर रहा हो और इदराक कर रहा हो लेकिन न पूरे तौर पर जो समझ रहा हो न बयान कर सकता हो, बस एक तशनगी सी बरकरार रहती है। हाँ जी, ये पहले बताया गया कि पहली किस्म का फेज आप सल्लम और मोहम्मद मशरब अलिया इक्राम को भी, यानी सबको सिफात के जरिए से मिलता है। इसमें इब्तिदा में ऐसा होता है कि सालिक के ऊपर किसी खास सिफत की तजल्ली होती है और आप स्वयं के तवस्सुत से होती है, तो इससे फिर उस सिफत में पुख्तगी हासिल करते करते फिर वो आगे सफर करते हैं। शान इलम का जिल और आप सल्लम का इसमें मुरब्बी। मैं फिर उधर से शुरू हो चुका हूं, उसकी वजह यह है कि पिछली दफ़ा रिजल्ट यह था कि काफ़ी, लेकिन मैंने फिर ये बात अर्ज़ की थी कि ये इसमें कोई खिफत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पहली दफ़ा कर रहे थे हकीकत जज्ब सलूक से पहले, तो चार दफ़ा किया था ना, और तो ग्रुप डिस्कशंस भी होते थे, तो इस वजह से ये चूंकि वही मजमून है जो इसमें शामिल है, लिहाजा अगर किसी को समझना है तो भी कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता तलब से मिलता है। तो अभी तक जो हजरात सुन रहे थे उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बता दें। अभी तक जो है समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। शान इलम का जुल और आप सल्लम का इसमें मुरब्बी, बात शूनात की हो रही है, सिफात की बात हो गई। तो ज़िल किसको कहते हैं? ज़िल कहते हैं तनज़ुल को, किसी चीज़ की तनज़ुल जब हो जाती है, मतलब उसका दूसरा रूप। मिसाल के तौर पर सूरज को हम आईने में देखें तो अब जो आईने में सूरज नज़र आ रहा है वो सूरज नहीं है, वो क्या है? सूरज का ज़िल है, सूरज का ज़िल। तो इस तरह शान इलम जो अल्लाह ताला का इल्म की शान है, बड़े शान वाला आलम, मतलब इस तरह नहीं, शान इल्म का जिल और आप सल्लम का इसमें मुरब्बी। इसमें मुरब्बी से मुराद ये होता है कि कौन सा इसम है जो किसी का मुरब्बी है, उसकी तरबियत कर रहा है, उसके जरिए से उसकी तरबियत होती है, ये इसमें मुरब्बी कहलाता है। जो अल्लाह ताला का नाम आप सल्लम का रब है, वो अल्लाह ताला के इल्म की शान का ज़िल है, क्योंकि शान से सिफात निकलती है और सिफात से अस्मा, यही बात होती है ना। जो अल्लाह ताला का नाम आप सस्म का रब है, वो अल्लाह ताला के इल्म की शान का ज़िल है, और अल्लाह ताला के इल्म की शान तमाम इजमाली और तफसीली शुनात की जामे है। इलम की शान तमाम अजमाली और तफसीली शुनात की जामे है। अजमाली से मुराद ये खुलासे के अंदाज में है, जैसे मैं मुख्तसर किस चीज़ का तारुफ कर दूँ, ये अजमाल होता है। वो तफसील उसमें यह है कि जो पूरा पूरा इसके बारे में बात हो जाए तो उसको तफसील कहते हैं। जी हजरत, मतलब ये कि उसके जो इल्म की शान है उसका ज़ुल है। हाँ, जो भले इल्म की सिफत जिस शान से आया वो उसको इल्म की शान है। तो और उसका ज़िल शान इल्म के लिए, उसका ज़िल शान इल्म के लिए ज़ात ताला व तकद्दुस की काबिलियत के लिए, बल्कि तमाम अजमाली व तफसीली शून बशमूल शान इल्म की काबिलियत के लिए, मतलब उसका और उसका ज़िल, मतलब जो उसका ज़िल है यानी मतलब वो क्या है, वो असल में अल्लाह ताला के साथ मतलब जैन ताल्लुक़ पैदा करने का वो ज़रिया है काबिलियत के लिए, ज़ात ताला शान इल्म के लिए ज़ात ताला व तकद्दुस की काबिलियत के लिए, बल्कि तमाम अजमाली व तफसीली शून बशमूल शान इल्म की काबिलियत के लिए है। ये काबिलियत हक ताला और शान इल्म के दरमियान बरज़ख़ का दर्जा रखती है। मतलब यह कि शान इल्म जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की शान के साथ ताल्लुक़ रखता है और अल्लाह ताला ख़ुद अल्लाह ताला है। तो जिसका एक रुख अल्लाह ताला की तरफ है और दूसरी तरफ वो शान है, लेकिन चूंकि उसकी अल्लाह वाली जिहत बेरंग है, यानी अल्लाह पाक की ज़ात तो अलवरा है, मतलब उसका कोई रंग नहीं, कोई वो नहीं, बेरंग है, और बरज़ख में उसका कोई रंग पैदा नहीं होता, इसलिए बरज़ख में भी दूसरे जिहत के रंग यानी शान इल्म के रंग से रंगीन है। मतलब गोया कि अल्लाह ताला आपको यानी गोया के मुतारफ़ होंगे शान इल्म के साथ, यानी गोया कि आपका जो इल्म है वो अल्लाह ताला के बारे में वो आपको मुनक्किस होगा, अल्लाह ताला की ज़ात तो आपको नज़र नहीं आ सकती। समझ में आई ना बात, जो भी आपको समझ आ रहे हो आपका इल्म है, ठीक है ना, सही है। अभी आगे आगे बात आएगी। इसलिए बरज़ख में भी दूसरी जिहत के रंग या नशा इल्म के रंग से नहीं, बस लाजिमी तौर पर उसको शान इल्म का ज़िल कहा गया है। कैसे, अगर आप शफाफ चीज़ को किसी रंगीन चीज़ के पीछे रखते हैं, शफाफ चीज़ को किसी रंगीन चीज़, मिसाल के तौर पर कोई रंगीन चीज़ जैसे गिलास, गिलास का शीशा सबज है और पानी बेरंग है, उसके अंदर आपने रख लिया, वो मुझे जो है ना वो पानी नजर आ रहा है शीशे से गुजर के, हाँ जी, अब वो शीशे में तो रंग नहीं है, लेकिन वो जो है ना मतलब एक जो उसका जो रंग है वो मुझे सबज दिखाई देगा कि मतलब ये सबज है, कोई कि मुझे गिलास भी सबज नजर आएगा, हालांकि गिलास सबज तो नहीं है, ठीक है ना। या यूं समझ लिया कि मैं सबज रंग की गिलास पहन लूँ यानी ऐनक पहन लूँ तो मुझे सारी चीज़ें सबज नजर आएंगी, मतलब ये वाली बात है, बस सबज गिलास में पानी सबज नजर आए, बस वाजे हो कि वो चीज़ रंगीन नजर आएगी, क्योंकि आप जिस वजूद को देख रहे हैं वो रंगीन है और जो शफाफ है उसका तो कोई रंग नहीं है, लेकिन जो रंगीन है वो दूसरे के लिए हिजाब बन जाएगा, यानी वो उसके बेरंग चीज़ को छुपा देगा, उसके असल को छुपा देगा, और वो चीज़ आपको वैसी नजर आए। असल में अल्लाह पाक सारे हिजाबात नहीं उठाते, एक हिजाब इलम का भी है वो बाकी रखा जाते वो नहीं उठाते, हमें एक तरफ से अपना इलम नजर आता है लेकिन उसके पीछे होते अल्लाह पाक। अगर साया नजर आए तो असल में असल भी मौजूद है, अगर साया नजर आए तो असल भी मौजूद, तो अगर अल्लाह पाक का इलम नजर आ रहा है तो उसका मतलब है कि अल्लाह पाक भी मौजूद है। यानी यूं समझ लीजिए कि अल्लाह जल्ला शानू को तो कोई देख नहीं सकता, वो तो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह जल्ला शानू के बारे में आपका जो तस्वर बनेगा वो तस्वर खुदा की तरफ जाएगा, तो चूंकि आपको अपने तस्वर से वो महसूस होता है तो अल्लाह ताला की मौजूदगी तो आपको फील होगी लेकिन अल्लाह पाक आपको नजर नहीं आएगी, और वो हर चीज में है, मतलब आप जिस चीज को भी देखेंगे तो उससे आप अल्लाह ताला की तरफ पहुंचेंगे लेकिन वो अल्लाह पाक आपको नजर तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। और वो चीज़ किस तरह अल्लाह पाक की तरफ आपको पहुंचाएगी, आपके इल्म के जरिए से, क्या आपको पता हो गया तो अल्लाह ताला ने बनाया, आज ये तो अल्लाह ताला अल्लाह इसका मालिक है, अल्लाह पाक ही ने उसने बनाया, अल्लाह पाक इसकी परवरिश, मतलब गोया है कि आपकी नज़र अल्लाह पाक पर जाएगी अपने इल्म के रास्ते से, लेकिन वो चीज़ जो होगी वो आपको ले जाएगी आपके अपने, तो आपको अपना इल्म नजर आ रहा होगा। हाँ, तो इसका मतलब कि अल्लाह पाक भी मौजूद है। आपको खिड़की से साया नजर आया, तो इसका मतलब क्या है कि सूरज भी मौजूद है। अगर सूरज मौजूद ना हो तो साया कैसे मौजूद हो? बस आपको जो चीज नजर आ रही, कोई आपको बता रहे कि उसके साथ वो भी है जिसकी वजह से ये है। जरा थोड़ा सा गौर कर ले, वहदतुल वजूद में यही तो बात थी, यानी जिस वजह से वहदतुल वजूद शुरू हुआ था वो वही तो बात थी कि हम हर चीज को जब देखते हैं तो अल्लाह ताला को उसके जरिए से हम मौजूद पाते हैं। वो चीजों की मौजूदगी हमें अल्लाह पाक की वजूद बताती है। हाँ जी, तो अब जाहिर मतलब है कि हर चीज के जरिए से चूंकि अल्लाह मिलता है, यानी अल्लाह पाक का इल्म मिलता है, तो मोहब्बत का ताल्लुक जब उसके साथ शामिल होते हैं तो वो फिर ये कुर्ब इतना बढ़ता है कि उन चीज़ों में फ़र्क और अल्लाह में मतलब बहुत कम महसूस होने लगता है। नतीजतन फिर यही होता है कि बस हर चीज़ में आपको अल्लाह पाक नज़र आता है, लिहाजा यानी अल्लाह ही है और कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मिटती जाती है, बाकी चीज़ों का वजूद आपके इल्म से मिटता जाता है। ये बात नोट करें या हम बर्द है, आपके इलम से मिट जाता है। चीजें मौजूद तो होती लेकिन आपके इलम से मिट जाती है, और यही होता है वहदतुल वजूद का फर्क, कि जब इलम मौजूद होता है तो वहदतुल शहूद है, जब इलम मिट जाता है, इलम से मिट जाते हैं तो क्या होता है, वो वहदतुल वजूद होता है। समझ में आई बात? वो इलम की बुनियाद पर होता है ना। आपको हर चीज मतलब जाहिर यानी जब आप यानी बाकी चीजों का इलम, अपने इलम में बाकी चीज़ों का वजूद आपको ख़त्म हो गया, बस सिर्फ अल्लाह ही, अल्लाह का नजर आना इतना ज़्यादा हावी हो गया कि वो उस चीज़ का अपना वजूद ख़त्म हो गया, हत्ता कि आपको अपना वजूद भी ख़त्म महसूस हुआ कि मतलब वो भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर कौन है? फिर सिर्फ अल्लाह है ना। तो ये बात तो वजूद की मतलब बनती थी। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि पहुंच जाए जिल। बस यही बात है ना कि वो तो हजरत मुजद्दद साहब ने बात फरमाती है कि कोई चीज़ भी आपको नजर आ रही है वो उसकी तमसील ही होगी, वो कोई मतलब अल्लाह ताला तक तो कोई नहीं जा, बेशक ख्वाब में देखे, कोई ख्वाब में भी अल्लाह पाक नहीं दे, उसके कोई तमसील होगा। हजरत ने तमसाल का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ जी, तो ये तो वही होगा, मतलब अल्लाह पाक को तो कोई देख सकता नहीं। लन तरा नहीं, रईसुल मुहिब्बीन मूसा अलैहि सलाम, उनको ये जवाब मिल गया तो बाकी लोगों की हैसियत है। हाँ जी, हाँ असल में बात ये नहीं, मतलब जाहिर यानी उसको आप नूर ना कहे, अलबत्ते ये कि वो किसी भी सूरत में जाहिर हो सकती है। तजल्ली जो है मतलब किसी भी सूरत में जाहिर हो सकती है, मतलब तजल्ली से मुराद यही है। तो अमूमन तो लोग उसको कहते हैं कि वो हर हालत में नूर ही होता है, मतलब यह कि वो जैसे एक रोशनी चमक जाए तो वो तजल्ली है, ये वाली बात। मतलब गोया कि यूं समझ लीजिए कि आप जो अल्लाह को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह को तो चूंकि आप देख नहीं सकते, तो जो चीज़ आप देख सकते उस सूरत में जो चीज़ जाहिर हो जाए उसकी तरफ से वो तजल्ली होगी। हाँ, मतलब जाहिर वो उस सूरत में भी होगी, तजल्ली सूरी भी एक चीज है ना। मतलब वो भी तो बताते हैं ना, तो कौन सी चीज होती है? कोई सूरत ही होती है ना तजल्ली। हाँ बिल्कुल, कोई मिसाली सूरत ही होती है, तजली मानी हुई थी। तो बस आपको जो चीज नजर आ रही कोई आपको बता रहे कि उसके साथ वो भी है जिसकी वजह से ये है। अच्छा, अभी तक बताओ भाई, कोई बात ऐसी कोई बात हो जो समझ नहीं आई हो? ठोकर का ही है ना थोड़ी सी। समझ आई? अच्छा, उम्मत के लिए सिफात इलाही का जहूर। जी हजरत, फरमाइए।
अल्लाह ताला का तनाजुल
तजल्ली होती है। असल में ये भी वाकई मतलब हमारे समझाने के लिए माहियत इलाही बजात खुद मुतशाबिहात में से हजरत मुजद्दद साहब ने फरमाया ना कि माहियत इलाही जो है मुतशाबिहात में से है, यानी इसको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है कैसे हम नहीं जानते, है हमारे साथ। जब फरमा कोई जिक्र कर रहा होता है जुबान से, होंठ उसके हिल रहे, अल्लाह उसके साथ होते हैं, कैसे अल्लाह को पता। हाँ जी, तो मैयत इलाही बजात खुद जो है ये क्या है, ये मुतशाबिहात। हाँ, ये भी मुतशाबिहात में से। उसकी वजह यह है कि ये तो साफ बात है, जैसे अर्रहमान अलर अर्श इस्तवा, ये तो उसी किस्म का है ना, तो ये तो मुतशाबिहात का आला सूरत है। इसके बारे में हजरत इमाम मालिक रहमत से पूछा गया कि अर्रहमान अलर्श इस्तवा का मतलब क्या है, तो उन्होंने फरमाया अल इस्तवा मालूम वल्केह मजहूल वस्सवाल अनुल बिदा। मतलब इस्तवाब का पद मालूम है कि क्या चीज़ है, हमें अरबी मतलब पता है, और कैफियत उसकी क्या होगी ये मजहूल है। हाँ, सवाल करना इसके बारे में बिदत है। उसकी वजह कि जो चीज़ आप समझ नहीं सकते उसको समझने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं। हमारे साइंस में भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है या नहीं है, कहते हैं इसके बारे में आप कुछ ना कहें, ऐसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाँ जी, हमारे ऑडिट में और इसके जो प्लानिंग वगैरह होती है, प्लानिंग वगैरह जो होती है उसमें बाकायदा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो बनती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो अगर वो फिजिबल नहीं है तो उसको ख़त्म कर लेते भाई, ठीक है जी, अब इस पर बात ना करो। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें एक सवाल दिया गया, रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम सवाल दिया गया, बड़े लंबे छोड़े फार्मूले हमने इस्तेमाल किए, लेकिन वो जवाब जो आ रहा था वो ठीक नहीं आ रहा था, मतलब कम अज़ कम अंडरस्टैंडेबल नहीं था, भाई ये भी जवाब हो सकता है। हर तरह से चेक किया कि भाई हमसे गलती कहाँ हुई, ये वो चेक किया, लेकिन नहीं नहीं आ रहा था। तो मैंने लिखता विद अवेलेबल डेटा इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कि जो मौजूदा हमें मालूमात दी गई उसके जरिए से हल नहीं हो सकता। तक क्या आखिर जिस प्रोफेसर ने वो दिया था वो हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ लाए थे फैसलाबाद, तो वहाँ इतकाफ़ करने के लिए फिर गए, तो मैं भी जा रहा था, जब इम्तिहान ख़त्म हो गया तो मैं भी चला गया, तो उनसे मुलाकात हो गई। तो उनसे वैसे मैंने बारे में पूछा कि मैंने हजरत आपने जो सवाल दिया था उसका कोई जवाब भी था, उसने कहा आपने क्या जवाब लिखा है, मैंने कहा लिखा विद अवेलेबल डेटा इट कैन नॉट बी, कहते यही जवाब था इसका, इसका यही जवाब था। तो इसका मतलब है कि बात चीज़ ऐसी होती है जो, हाँ खैर, जो अल्लाह ताला की सिफात का जोर है वो भी सबसे ज्यादा आप सब की उम्मत के लिए आप सब अजम के तवसुत से हुआ है, क्योंकि आप सब अजम का इलम सब से कामिल, तो जो मारिफत है वो सबसे कामिल, तो आप सब के जरिए से जो मारिफत मुंतकिल हुई वो भी सबसे कामिल होगी, यानी बाकियों के मुकाबले में, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की मारिफत रखने वाली जात आप सब अजम की है, चूंकि आप सलम की मारिफत बहुत जाती है, इस लिहाज से आप सलम की उम्मत भी की भी मारिफत बाकी उम्मतियों से बाकी उम्मतों से बेहतर है, क्योंकि उनको आप सलम के तवस्सुत से मिली है, तो जो आप सलम के रफ़का है और करीबी अवलिया है उनके मारिफत दूसरी उम्मतों के अवलिया अल्लाह की मारिफत से ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह की सिफात बाकी उम्मतों पर इतनी नहीं खोली गई जितनी आप सलम की उम्मत पर खोली गई है। अब एक तो होती है ख़ास सिफत की काबिलियत, जिस सिफत इल्म की काबिलियत, सिफत रज़ाकियत की काबिलियत, सिफत रहमत रहमियत की काबिलियत, और एक होता है जिससे तमाम सिफात का इजरा होता है उसकी काबिलियत, ये जामे काबिलियत कहलाता है। तो इन अवलिया में जो आप सब के मुबारक कदम पर है और अल्लाह ताला के वो नाम जो इनके लिए फैज़ सानी के हुसूल अरबाब हैं, हुसूल के अरबाब वो जामे काबिलियत के जलाल है। यहाँ पर वो बात जरा मुझे याद करानी होगी, मोहम्मदी मशरब वो हजरात यानी जो आप सब के मुबारक कदम पर हैं, और चूंकि हर एक का इसमें मुरब्बी होता है, तो ये इनके जो मुरब्बी अल्लाह ताला के वो नाम जो इनके लिए फैज़ सानी के उसूल के अरबाब हैं وہ اس جامی قابلیت کا زلال ہو میں سے ہوگا. یعنی باقی کے تو جامی قابلیت ہر ایک کے صفت کے اس کا ذل ہوگا, سمجھ میں آ گئی نا بات, باقی جو حضرات ہوں گے, لیکن جو محمدی مشرب ہوگے وہ اس جامی قابلیت کے زلال میں سے مطلب ہوگا منام. اور ذل مجمل کے لیے تفصیلات کی طرح ہے, اور وہ ذل مجمل کے لیے تفصیلات کی طرح ہے, اور اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو ان کے لیے فیض ثانی کے حصول ارباب ہیں وہ اس جامع قابلیت کے زلال ہے, اور وہ ذل مجمل کے لیے تفصیلات کی طرح ہے. مطلب باقی تفصیلات اسی سے آئیں گے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اگر ہوتے تو اجمالی طور پر ہوتے, یہ مجمل ہوتا ہے, مگر جیسے وہ ان چیزوں کی طرف غور کرتے ہیں تو جو صفات ہوتی ہے ان کو تفصیلات نظر آتی ہے, اور جو دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے پر ان کو صفات کے ذریعے دونوں فیض ملا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یعنی دوسرے لفظوں میں محمدی مشرب والوں کو سارے صفات کا ایک مطلب وہ دیا جاتا ہے, یعنی شان کے ساتھ ہے نا, تو وہ ان کا مجملاً سب کا خلاصہ مل رہا ہے, اور باقی صفات کی طرف اگر وہ متوجہ ہوں گے تو وہ ان کی مطلب گویا کہ اس اجمال کی تفصیلات ہوں گی. ہاں جی, اس اجمال کی تفصیلات ہوں گی. واللہ اعلم بالصواب, میں اس کو کہہ سکتا ہوں یا نہیں, لیکن توکلاً کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اسی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان نکلتی, اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی شان نکلتی, اس سے عثمان, سب فرماتے ہیں نا, اس سے عثمان رضی اللہ عنہ کی شان نکلتی, اسی سے علی رضی, وہ سب کے الگ الگ ہے. تو یہ اس کی تفصیلات ہیں نا, سمجھ میں آئے گی نا بات, یہ اس کی تفصیلات. صفات کے ذریعے سے اکتساب فیض, یہ تو مطلب اس کے ذریعے سے ہو گیا نا, جس کو ہم محمدی مشرب اولیاء کا جو بات کی, جو شان کے ذریعے سے, اب صفات کے ذریعے سے, صفات کے ذریعے سے اکتساب فیض. اولیاء اللہ کی وہ قسم, ذرا یہاں پر ایک بات میں عرض کروں, ایسا نہ ہو کہ میں آگے چلا جاؤں اور اسی طرح کوشچن ذہن میں رہ جائے. محمدی مشرب جو اولیاء ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے, سمجھ میں آ گئی بات, ان کی بڑی تعریف بھی ہم نے سن لی. انبیاء کرام وہ ظاہر مطلب ہے کہ مطلب ذل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اس پر ان کا ہمارا بھی صفات کے ذریعے سے پاتے ہیں. اچھا, محمدی مشرب شان کے ذریعے سے پاتے ہیں, اور انبیاء کرام بذات خود صفات کے ذریعے سے پاتے ہیں, کیا وہ محمدی مشرب ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ کنفرم بات ہے نا, میرے خیال میں ایسا سے کم تری ختم ہونی چاہیے.
انبیاء میں کوئی
اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صفات کے ذریعے سے بتا دیا گیا نا, ان کی اپنی شان ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں نا, سمجھ میں آ گئی نا بات, کہ یہ جو ہے نا, یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا. ہماری خانقاہ میں یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے, کیونکہ یہاں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, باقی خانقاہوں میں تو نہیں پڑھائی جاتی. اب جب پڑھائی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کوشچن بھی آئیں گے, سوالات بھی آئیں گے, اس کے سائیڈ افیکٹس مطلب وہ چیزیں آئیں گی, تو بہت سارے حضرات اس وجہ سے کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم محمدی مشرب کیوں نہیں ہیں, یا فلاں بات کیوں نہیں, اور ہمیں شیونات کے ذریعے سے کیوں نہیں ملتا, یہ بات سمجھ میں. تو اس کے لیے میں نے پھر اسپیشلی ایک غزل لکھی, ہاں جی, تاکہ یہ کیفیت مطلب انسان کی ختم ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ملتا ہے, جو اس پر شکر کرتا ہے, تو خدا کی قسم وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے جو اس پر شکر کرتا ہے, اور جو شکر نہیں کرتا پھر کیا ہوتا ہے وہ تو میں بتاتا نہیں, خطرناک بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے یہ بھی مجبوری ہے بتانا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مطلب ہم لوگ ناشکریوں میں آ جائیں, تو اس کے لیے آپ ذرا اس کو ملا دیں.
کیسے
اللہ جل شانہ نے हमें चांस दिया है, जो भी अल्लाह ताला को पाना चाहता है उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। इस वजह से जिस रास्ते से भी कोई आ जाए तो वो कबूल है, तो अब शिकायत की कोई बात नहीं रहती। साफ बात अर्ज करता हूँ, कम से कम मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरे ऑब्जर्वेशन से मुराद किताबों का मुताला, काका साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो जद अमजद थे वो मादरजात वली थे। मादरजात वली का मतलब ये होता है कि यानी पहले से ही बचपन से कम उनको आप कह सकते हैं कि वो चुने हुए थे, महबूबीन में से थे। लेकिन जितने मुजाहिद हजरत ने किए ना, तो शायद मैंने किसी और के बारे में सुना हो। आप खुद पढ़ ले, मुजाहिद साहब ने तो पढ़ा है ना, कितने मुजाहिदात है हजरत, बल्कि हजरत आपने भी तो पढ़े हैं कि मुजाहिदात की पहचान ही हजरत से मतलब जन महसूस होती कि मैं, हालांकि बिल्कुल चुने हुए थे। आप सल्लम कसरत के साथ इबादत करते थे, हत्ता के पाँव में भरम आ गया तो सवाल किया गया कि हजरत आप तो बख्शे बख्शे हैं, फिर मैं अल्लाह पाक का शुक्र करने वाला ना बनूं। तो इसका मतलब यह है कि जो चुने हुए होते हैं ना वो मुजाहिदा ज्यादा करते हैं। ये नहीं कि वो मजे से इस तरह खरामा खरामा चले जाते हैं, नहीं है। और जो चुने हुए नहीं और अपने आप को पेश करें तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल करने वाले हैं। कुरान से बाकायदा नस मौजूद है। हाँ जी, लव यश तभी लह मई यशा व यहदी इलह मयूनि, दोनों के लिए रास्ता खुला है। तो फिर इसके बाद मसला क्या रह जाता है? मसला तो कोई नहीं रह जाता। तो ये इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि इसके लिए जरा इस हिजाब को दूर करने के लिए जज्ब की जरूरत है। जज्ब मतलब ये अशआर जो अगर देखे तो इसके अगले सारे अशआर जज्बी हैं। मतलब उसमें वो जो कहता है कि बेकार अगर लोग मुझे कहें तो कह दें कोई बात नहीं। आखिर हम हदीस शरीफ पर अमल है, इतना जिक्र कर उतना कर लो कि तुम्हें पागल गए तो क्या चीज़ है। हाँ जी, और मतलब कोई रिश्ता मेरे और ताल्लुक के दरमियान ना आए तो ये भी बिल्कुल वही जज्ब है, और मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है उसी पर भरोसा, तो ये भी वही जज्ब है। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को पाने के लिए जज्ब की ज़रूरत है। अब ये जज्ब जिस रंग में भी हो, मिसाल के तौर पर किसी को शेख के साथ इतनी मोहब्बत हो जाए जज्ब की सूरत इख्तियार कर ले तो उसका भी काम बन जाएगा, और किसी को जिक्र अस्कार करा के इतना जज्ब उन पे तारी कराया जाए तो मेरे उनका भी काम हो गया। इस वजह से मायूसी की बात कोई नहीं है, मायूसी की बात कोई नहीं। मायूसी अगर फिर भी कोई होता है तो सिर्फ अपना आप खुद जिम्मेदार है। हाँ जी, वरना अल्लाह ताला के हाँ तो कोई कमी नहीं है। और हजरत तानवी मुसब इस बारे में एक शेर फरमाया करते थे। हजरत तानवी मुसब के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो भी वही चुने हुए लोगों में से थे, महबूबीन में से थे, क्योंकि हजरत का एक ख्वाब अपना मैंने इसके सवाने में पढ़ा है कि हजरत ने ख्वाब में देखा कि दो परिंदे हैं, अंधेरा है, तो दो परिंदे मुझसे कह देते हैं कि हमारे लिए रोशनी का इंतज़ाम। तो मैंने कहा मैं क्यों करूं, तुम खुद करो ना। हाँ जी, कहते उनने दोनों चोंच रगड़ी और उससे रोशनी पैदा हो गई। तो ये ख्वाब उनने अपने उस्ताद मौलाना याकूब नानूती रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया। फिर मैं सुभान अल्लाह, सब कुछ मिल गया, एक रूह है एक नफ्स है। तो उन्होंने आपसे कहा कि मुजाहिदा करो, मतलब जाना वो, तो आपने कहा खुद करो, तो अल्लाह पाक ने उनसे ही करवा दिया। तो मकसद ये कि ये जो चुने हुए लोग होते हैं यकीनन उनका रुझान ही वही होता है, बाकी जो है रास्ता तो किसी और पर भी बंद नहीं है। यहदी लहम यूनिप वो वाली बात बिल्कुल मौजूद है। लिहाजा इस सवाल को जहन में लाना ही नहीं चाहिए कि मैं क्या हूं, ये सवाल लाना चाहिए मैं मुझे क्या करना चाहिए। और एक बात बिल्कुल वाजे तौर पर समझा दूं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, जो इस जमन में बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर आप महबूब हैं और आपने मुजाहिदा कर लिया तो आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपका रास्ता और आसान हो जाएगा। और ये कि मतलब अगर आप अपने आप को गैर महबूब समझें तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, वरना आपका रास्ता और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप महबूब नहीं और महबूब समझ लिया अपने आप को, तो अपना कबाड़ा कर दिया, क्योंकि जो रास्ता आपके लिए बने नहीं उस पर चलने की कोशिश करोगे तो नतीजा क्या होगा? नुकसान होगा। लिहाजा सेफ साइड यह है कि सब हम सब अपने आप को समझे कि हम ठीक है मुनीबीन में से, ये बाय डिफॉल्ट मुफीद बात है कि हम सब अपने आप को मुनीबीन में से समझे। बाकी अल्लाह को पता है कि कौन क्या है, मुमकिन आपकी जिंदगी गुजर जाए उसके बाद लोगों को पता चल जाए कि आप फलाद हैं, लेकिन उससे क्या, अब आपके ऊपर तो गुजर गई ना बात, आपका मामला तो गुजर गया। तो ये मतलब जाहिर है कि ये मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि इसमें इस घाटी में बहुत सारे लोग गिरते हैं और अपने आप को इससे बचाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए। अल्लाह अकबर। तो अवलिया अल्लाह की वो किस्म जो सिर्फ सिफात के जरिए से लेती हैं वो भी आप हुक्म के मुताबिक ही है, क्योंकि आप सब ने फरमाया कि अल्लाह ताला को उसकी सिफात से पहचानो, तो इन्हीं ही सिफात के जरिए से मारिफत मिलती है। तो इन्हीं सिफात के जरिए से मारिफत मिलती है मोहम्मदी मशरब के अलिया कराम, अलबत्त दूसरी किस्म का फैज लेने जो सिफात से आगे शुनात में भी जाते उन्हें भी आप सलम के तवसल से मिलता है। जब इस मुकाम पर पहुँचते तो इन्हें ये सिफात वाली चीज़ें तफसीलात मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह पाक के सामने हुजूर की कैफियत में सिफात की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, इसलिए उसको ये तफसीलात मालूम होती है। तो इसके लिए तफसीलात है, जबकि पहली किस्म के अलिया के लिए यह रास्ता है। जैसे कि मालूम हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात चूंकि दोनों किस्म के फ्यूज़ का वास्ता है, आप सल्लम के तवस्सुल से दोनों किस्म के औलिया अल्लाह को फैज़ मिलता है। बाद में कुछ औलिया सिफात के जरिए कुछ यूनात के जरिए लेते हैं, इसलिए आप सल्लम को दोनों किस्म के फैज़ अता फरमाए हुए हैं। आप सल्लम को चूंकि मारिफत बगैर किसी हिजाब के मिली है, तो जो उस रास्ते पर है वो तो आप सल्लम के रास्ते पर है, और दूसरे हजरात सिफात के जरिए पहुँचते, लेकिन सिफात की तरह दयान उनके लिए हिजाब बन जाता है। वही वाली बात। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा। अब पहले बताएं भाई, ये बातें समझ में आ गई? उसमें कोई बात तो रह तो नहीं गई? हाँ, मोहम्मदी मशरब कौन है? हाँ, ये आपसे पहले डिस्कस हुआ था। मोहम्मदी मशरब जो आप सल्लम के कदम पर है, यानी हर वली किसी नबी के कदम पर होता है, ठीक है ना, हर वली किसी नबी के कदम पर होता है, तो जो आप सलम के कदम पर है उनको मोहम्मदी मशरब कहते हैं। और कोई सवाल? जी हजरत। जी हजरत।
कोई आदमी अगर उसको किसी वक्त सुन्नत पर अमल करने की तौफीक हो और उसी वक्त वो अपने आप को ये समझे कि इसकी वजह से मैं महबूब हूं, क्योंकि कोई इंसान को महबूब
करना, देखिए वो महबूब पैदा करना और किसी चीज से महबूब हो जाना, दोनों में फर्क है। ऐसे तो फिर सारे महबूब ही नहीं, कौन है जो सुन्नत पे नहीं चलेगा? मतलब जो उसकी उस भी सुन्नत के चलने की तौफीक होती है तो वो जो है ना, वो ये है कि वो महबूबियत अलग है। उसके मुझे साहब ने समझाया वही बात, आपको याद आ चुका होगा। हाँ जी, कि उनने फरमाया कि ये वो और है, और वो जो मतलब यानी इब्तिदा से जो चुने हुए लोग होते हैं वो और है। ये तो कसब है ना, सुन्नत पे चलना कसब है या नहीं है? तो ये तो कसब है ना, वो तो कसब नहीं वह भी है। ये वाली बात है। नहीं बनता, बन नहीं सकता वाली बात मैं नहीं कहता, बनता नहीं, बनता नहीं है। उसकी वजह कि उसका ताल्लुक कसब के साथ है। मुदस्सर, आपको याद है कि मक्तूब शरीफ जो इसमें जो ये बात की गई थी, उसमें तकसीम है मतलब पूरे ने इन तमाम चीजों का। हाँ बिल्कुल, हाँ उसमें है कि मतलब यह है कि जो इत्तबा सुन्नत के ज़रिए से कस्बी तौर पर वो महबूबियत है, वो क्या है उसकी बात, चल बाद में बता दें, अभी तो ज़्यादा बात।
मतलब इसको थोड़ा
जी क्या
ये
हाँ इत्तबा सुन्ना जो है वो तो कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउन, यानी उस वक़्त आप अल्लाह पाक के महबूब हैं जब आप किसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला को सुन्नत पर चलना महबूब है, तो जो उस पर अमल करते हैं महबूब हो जाते हैं उस वक्त। हाँ वही कस्बी और वाबी फ़र्क है, वो जो असल में बुनियादी सवाल कस्बी और वाबी का है। हाँ ये हज़रत मुजाहिद साहब ने ये भी साफ़ किया है, मतलब ये है कि हम लोग मुजाहिदा करते हैं नफ्स के ख़िलाफ़, हम लोग जो मुजाहिदा करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो या जो दूसरे अंबिया किराम जो मासूमीन हैं वो जो मुजाहिदा करते हैं वो लोगों के नफूस के असरात पर सब्र करने से उनका मुजाहिदा होता है। ये उनकी बेतदाली जो होती है वो ज़ाहिर उसका असर उन तक पहुंचता है ना, जैसे शाबी बिताले में क्या हुआ, वो तो लोगों की वजह से हुआ ना कि लोगों ने आपको बंद कर दिया था, उनकी मुखालिफत थी तो वो मुजाहिदा था, वजह तो खुद तुम इन्हें वो गैर इख्तियारी मुजाहिदा था, आपसे हमने खुद तो इख्तियार नहीं किया था। और अलबत्त ये है कि जो इख्तियारी बात है वो शुक्र के तौर पर थी, वो तो खुद आपसे हमने फरमाया शुक्र के तौर पर, क्या मैं शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ। वह भी चीज जो ग्रांटेड होती है, कस्बी चीज जो मतलब हासिल की जाती है बाय एफर्ट। हाँ बिल्कुल, हाँ बाय एफर्ट। ये मेरे ख्याल में ये चैप्टर मैं दोबारा खोलूंगा इंशाल्लाह, ये नहीं अच्छा है, ये चीजें होनी चाहिए सवाल। हाँ जी, हाँ ये बात है कि मुजाहिदात से मुराद बर्दाश्त, पर इन चीज़ों के बर्दाश्त के बाद चूंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुजूल हुआ था तो बहुत ज़्यादा उरूज था। हाँ बिलवोदिया तो नुजूल है, नुजूल है, इसलिए नुजूल और उरूज कंपेरेटिव होता है, मतलब आपस में जितना उरूज होता है उतना नुजूल, जितना नुजूल। और ये वही हज़रत मुजाहिद साहब वाली बात है ना कि अब्दियत से मारिफत और मारिफत से अब्दियत, अब्दियत से मारिफत और मारिफत से अब्दियत, ये मतलब वही सिलसिला है, तो ये चलता है। जिस किस्म का भी मुश्किल है अगर इख्तियारी जो भी है तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं और सब्र कर रहे हैं उस पर, तो मुजाहिदा है वो,
इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है
मतलब सारी ज़िंदगी में ये चीज़ है, क्योंकि मतलब ये है कि जो गैर इख्तियारी मुजाहिदात है वो सब्र के कबील से होते हैं, इसरारी है ना, तो मतलब ये कि वो सब्र के कबील से हैं, तो उस पर जो अजर होता है वो अजर इख्तियारी मुजाहिदात से ज़्यादा होता है, इस्तरारी पे जो अजर होता है, क्योंकि वो अल्लाह पाक का दिया वो मुजाहिदा है, जबकि जो दूसरा हमारा चुना वो मुजाहिदा है, दोनों में फ़र्क है। तो तानवी से फरमाते कि एक दिन की गैर इख्तियारी मुजाहिदा वो जो है ना बरसों की इख्तियारी मुजाहिदात से बढ़कर है। हाँ ये बात है, इसलिए मैं कहता हूँ सब्र ये जो बात है और ये शुक्र, ये दो चीज़ें हैं मतलब जिसपे इसमें भी इंसान चलता रहता है, सब्र और शुक्र, सब्र और शुक्र, सब्र और शुक्र, सब्र और शुक्र, मतलब इसमें सिलसिला चलता रहता है। हाँ मतलब ज़ाहिर ज़िंदगी में यही तो चीज़ है, आपके सामने जो हालात आते हैं उन हालात पे सब्र। हाँ जी ठीक है, काफ़ी। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك। بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहू 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 मुहम्मदुर रसूल हक 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 लम्स अल्लाह सीधा। अब हम राकिबा करेंगे अल्लाह अल्लाह कहा कि अल्लाह हमारे दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे और मोहब्बत के साथ अल्लाह पाक देख रहे। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد اللهم صل على سيدنا ولا على سيدنا ولا على محمد بارك وسلم اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري اللهم إنا نسألك تمام الفضل وتمام الوزو وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم أعطني كتابي يميني اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الأقدام اللهم اجعلنا مفلحين اللهم افتح اقبال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبي علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدني افضل ما تهدي عبادك الصالحين اللهم اهدني مسلما متني مسلما اللهم اعذب الكفرة والكي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك اللهم اعذب الكفرة على الكتاب المشركين الذين يشهدون اياتك ويكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعوذهم من شر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بيدك الذي زادتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي واسر لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو عني يا رؤوف ربي يا رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوفقني حسن عبادك. يا رب أسألك من الخير كله يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقنا السيئات ومن تقي السيئات يوم بزن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك أرجو الأمر كله أسألك خير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أزف عنا الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت بذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإبراهيم وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب أن دعوتي فأنا مستر وتعصمني في ديني فإني مسلم وتعني برحمتك فإني مسلم وتنفي عن الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا. أيما عبد أمت من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركنا في صالحهم ما يدونك فيه وأن تشركهم في صالح ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واقتبانا رسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة وجل في المستفين محبته وفي العالين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وافد لي من فضلك واسبي لي من رحمتك وانزل لي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك التوفيق على الهدى وامال اهل اليقين مناصحه اهل التوبه وهزم اهل الصبر وجد اهل الخشيه وطلب اهل الرغبه وتعبد اهل الورع وعرفان اهل المحتاج القاء. اللهم اني اسالك مخافه تهجر من معاصيك حتى عمل بطاعتك عملا استحق برضاك وحتى ناسك بالتوبه خوفا منك وحتى ورزق لك النسيئه وهي منك وحتى توكل عليك في الامور كلها وحسن ذنبك. سبحان خالق النور اللهم لا تولي تنفجات ولا تخزن بغتتهم ولا تغفلنا حكيم ولا واسيا. اللهم اعتني سواشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم وجل لي امام نور ودم رحمه. اللهم زكني من ما نسيت وعلمني من ما جهلت وارزقني تلاوه وانا الليل وانا النهار وجل حجتي يا رب العالمين. اللهم انا عبدك وامن عبدك وامن عبدك الناصر في قدك بيدك اتقل في قبضتك وسد في رقائك وأؤمن بوعدك أمرتني فأسيت ونهيتني فأتيت. هذا مكان العز من النار لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونذل أو نذل ونذل أو نذل أو نزل ما يظلم علينا أو نجهل ويجهل علينا أو أذل وأضل وأعوذ بنورك الكريم الذي أضاءت له السماوات وشق له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة أن تهل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك الهدبة تتضل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إني أعوذ بك من شر العميل السائل والبعيد السؤول وتقبل هذه الدعوات في حق محمد الشفيع الأول بن واسم محمد المصطفى محمد علي محمد الشفيع محمد الماجد مولانا محمد الشفيع السليماني ومولانا محمد الكريم يوسف محمد إقبال المدني والسيد علي شاه والسيد تنزيم والسيد تنزيم ورحمة الله عليهم وفي حقي وجميع المتعلقين وفي حقي أفهم مهاتم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات كل المخلوقات صلاة تنزيم الكلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.